محمد وعجل الله
الصلوات
صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والرسل سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائم على أعداء الله وأعداء كتاب الله وأعداء رسول الله وآل رسول الله. قالت شريكة الحسين زينب الكبرى سلام الله عليها: إنما مثلكم كمثل الذي نقزت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون إيمانكم دخلا بينكم ولا تكونوا كالتي نقزت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هم جو ہے کوفے میں ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا صلی علی محمد و کوفے کے بازار میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس کی شرح و تفسیر کر رہے ہیں، اور غالباً آج اس کا آخری سیشن ہو سکتا ہے. اگرچہ کوفے میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو مزید وہاں پر جملے ارشاد فرمائے ہیں، جو جواب دیے ہیں، جو اس زمانے کے شیاطین و طاغوت کے ساتھ جو ایک مکالمہ ہوا ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم جو ہے اس کے اوپر گفتگو ضرور کریں گے، اور پرسوں سے پھر جو ہے بی بی کے شام والا جو خطبہ ہے، جو شام میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ قدر طولانی ہے، اور پھر کچھ مکالمے بھی ہوئے وہاں پر، انشاءاللہ اس کی طرف ہم چلے جائیں گے اور اس کا آغاز کریں گے پرسوں سے. بی بی فرماتی ہیں کہ یہاں اصل میں قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 92 کو کوٹ کرتی ہیں اپنے خطبے کے اندر، جس کے پیچھے ایک شارٹ سٹوری ہے، میں بہت ہی شارٹ کر کے بتاتا ہوں. عصر جاہلیت میں ایک بہت ہی امیر خاتون ہوا کرتی تھی، اور اس نے بہت ساری اور خواتین کو ہائر کیا ہوا تھا، اور وہ ان کو روزانہ اون کے کاٹن کے بہت سارا ایک جو ہے کاٹن بڑی مقدار میں ان کو دیتی تھی، اور کہتی تھی کہ اس کو کادو تم لوگ اور اس سے داغے بنا لو، تیار کرو اس کو نرم کر کے. جب وہ نرم کر کے سب کچھ تیار کر لیتی تھی خواتین، تو شام ہوتے ہی کہتی تھی اب اس کو جو ہے پھاڑو، توڑ دو، ختم کر دو اور برباد کر دو. تو یہ ایک بے فائدہ عمل تھا جو وہ دہراتی رہتی تھی اپنی دولت و امارت کی وجہ سے، اور لگتا ایسا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پہ بیمار تھی، یا جو ہوتا نا ایڈک ہوتے ہیں بعض لوگ بعض چیزوں کے. تو ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سورہ نحل کی آیت نمبر 92 کے ایک حصے کو کوٹ کرتے ہوئے اہل کوفہ سے یہ کہتی ہیں، انہوں نے جو وعدہ خلافی کی اور ان کو جو بالکل ایک سینسیٹیو ٹائم پر جو رول ان کو پلے کرنا چاہیے تھا، جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی، اس ذمہ داری سے وہ باک کھڑے ہوئے، تو اس کی مثال دے دی اس خاتون کی طرح کہ دن بھر محنت کرواؤ، دن بھر محنت کرو، تکلیف اٹھاؤ، زحمت اٹھاؤ، اور جب ٹھیک جو ہے فیصلہ کن مرحلہ آ جائے تو فیصلہ کن مرحلے میں ساتھ دینا چھوڑ دو. تم لوگوں کی جو مثال ہے وہ اس خاتون کی طرح ہے، جو مشقت کرے، محنت کرے، تکلیف اٹھائے، اور ٹھیک جب نتیجہ اور ثمرے کا ٹائم آئے اور ایک فیصلہ کن گھڑی آ جائے تو تم لوگ کیا کرو، پیٹ دکھا کے بھاگ جاؤ. یہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اصل میں اہل کوفہ کو یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ کے اوپر تو کام ہوا تھا، آپ تو ایک پیور اسلام رکھتے تھے، آپ کی فکری ایک تربیت کی گئی تھی، اور اب اس تربیت کا نتیجہ سامنے آنا چاہیے تھا. آپ کے ایمان کا امتحان شروع ہو چکا ہے، آپ کے عمل صالح کا امتحان شروع ہو چکا ہے، تو اب آپ نے جو کام کیا نا، پہلے سے پریپیئر بھی تھے آپ لوگ اور خطوط بھی لکھ رہے تھے آپ لوگ، اور آپ کے اندر ایک काइंड ऑफ एक जज्बात उमट के आए थे कि भाई नहीं, हम तो साथ देंगे, नहीं हम तो सीधे रास्ते पे चलेंगे, नहीं हम तो सिराते मुस्तकीम को नहीं छोड़ेंगे, नहीं हम तो सही कुरानी और इलाही और मोहम्मदी दीन पर अमल करेंगे। तो दूसरी तरफ अचानक आपके सामने उसके रास्ते में एक रुकावट आ गई, डर की रुकावट आई, खौफ आ गया आपके सामने, जान जाने का खौफ, माल जाने का खौफ आया, और दूसरी तरफ एक लालच भी आ गया आपके सामने, पैसे आ गए आपके सामने, आपके सामने ओहदे आ गए, आपके सामने गवर्नरियां देने के वादे आ गए। तो आपके सामने जब ये चीजें आ गई तो वो उड़ गई, आपका वो ईमान भी उड़ गया, आपका वो जज्बा एकदम से ठंडा पड़ गया। तो लिहाजा आपकी जो मिसाल है वो ऐसी है कि नेकी कर दरिया में डाल, करते करते जो ठीक फैसला कुन मरहला है उस मरहले में आपने हमारा साथ छोड़ दिया। देखें ये असल में ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और सारी उम्मत के लिए है कयामत तक। आसानियों में हर कोई दीनदार बनने की कोशिश करता है, हर कोई दीन का ठेकेदार बना के अपने आप को पेश करता है, हर कोई अपने आप को बड़ा जबरदस्त मुत्तकी परहेजगार बड़ा दीनी आदमी बड़ा मजहबी किस्म का बंदा। आसानियां जब हो, कोई खतरात ना हो, कोई मुश्किल ना हो, दीन की वजह से दीन के मुकाबले में कोई लालच का रास्ता ना आए, तो हर कोई दीन को अपनाने की बात करता है। मर्द मोमिन, जिसको अलाम इकबाल भी कोट करता है, मर्द मोमिन और मर्द हक, हक के रास्ते का राही, एक सच्चा मोमिन इंसान का जो अहम मरहला है वो मुश्किलात के वक्त दीनदार रहे, मुश्किलात के वक्त सीधे रास्ते पे खड़ा रहे, मुश्किलात के वक्त सिरात मुस्तकीम को न छोड़े, मुश्किलात के वक्त जो है कोई ऐसा कदम उसका न डगमगाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक दूसरी बात, यहां पर मसला दीन की बका का है, असल दीन को बचा के रखना है, असल दीनी तशरी व तफसीर व अहकाम दीन को बचा के रखना है मुकाबले में जो यजीदी एक कंसेप्ट ऑफ रिलीजियस है या कंसेप्ट ऑफ जो है दीन है उसके मुकाबले में प्योर मोहम्मदी इस्लाम को पेश करना है, प्योर इलाही और खुदाई और कुरानी इस्लाम को भी पेश करना है। इसमें जो है इन मोमिनी का इम्तिहान है। अब देखें एक जुमला है सैयदुश शुहदा अलैहि सलाम का, रास्ते में और करबला में दोनों जगह दोहराया है, और एक उस वक्त के मुसलमानों की अक्सरियत की हकीकत बयान की है। हम अभी कूफे वाले के वालों के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कूफा रास्ते में था और ये काफिला कूफे में लाया गया था और खुतबे वहां पर इंसिडेंट ज्योग्राफिकली वहां पर हुआ, वगरना मदीने वालों का रोल भी तो कोई इतना अच्छा नहीं रहा है इस मसले में, मक्के वालों का रोल भी तो कोई इतना अच्छा नहीं रहा है, बसरे वालों का रोल भी तो कोई अच्छा नहीं रहा है, दीगर तमाम आलम इस्लाम जो भी इस्लामिक उस वक्त टेरिटरी थी सबका रोल वो नहीं रहा है। तो ये सिर्फ कूफे अहले मुजम्मत नहीं है, कूफा की सिर्फ टारगेट नहीं है कि कूफियों ने ये किया कूफियों ने वो किया, नहीं कूफी बेचारे रास्ते में आ गए, कूफियों की गलती ये थी कि उन्होंने खतूत लिखा था, तो जिन्होंने खतूत ही नहीं लिखा उनकी बड़ी गलती है फिर तो। मक्के वालों को क्या हुआ था, उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया, नवासे रसूल का साथ क्यों नहीं दे रहे थे वो, मदीना पूरा उठ के क्यों नहीं चला इमाम हुसैन के साथ। दाएं बाएं जब ये खबरें फैली, इमाम ने खुद खतूत भेजे, इमाम ने लोगों को भेजा पैगाम लेके, लोग गए पोस्टमैन जिसको आप कहें या नुमाइंदे इमाम के फरमाए, हज के मौसम में 3 से 4 महीने इमाम जो है मक्के में रहे हैं, खुतबे दिए हैं, इतनी बड़ी दुआएं पढ़ी हैं, लंबी आज हम पढ़ते हैं दुआए अरफा वगैरह और दीगर जो दुआएं हैं, इतने बड़े वाकयात हुए हैं मक्के में, सब हाजियों को पता चल गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज के अमाल को कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, हज को कंप्लीट नहीं करने वाले हैं, वो एंट्री ही मक्के में की है तो उमराए मुफरदा की नियत से इमाम वारिद हुए हैं, बता दिया लोगों को कि मैं उमराए मुफरदा की नियत से आया हूँ, हज करना मकसूद नहीं है, इसलिए कि मैंने आगे जाना है, हज को बचाने के लिए मैंने जाना है। तो लोगों को कहना चाहता, अगर हज खतरे में है इस वक्त, कुरान खतरे में है, नबी का दीन खतरे में है, तो भाई हज तो होती रहेगी, चले फिर पहले नबी का दीन बचाएं। सारे हाजी इकट्ठे होके एक काफिला बनाते ना, एक लश्कर तरतीब देते तो सब कुछ बदल सकता था। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अहले कूफा की क्योंकि ट्रेनिंग हुई थी, तरबियत की थी, और अहले कूफा रास्ते में थे, अहले कूफा ने सबसे पहले इकदाम करने की ये जुरअत की, बहादुरी दिखाई उन्होंने, लिहाजा जाहिर है जब अपने और जिनके ऊपर आपका भरोसा होता है उनसे ठेस पहुंचती है तो तकलीफ भी ज्यादा होती है, होता है कि नहीं होता है। तो ये जो मुजम्मती बातें हैं वो इस तरह है। इसलिए सैयदुल शुहदा नवासे रसूल के जुमले हैं कि बड़ी जबरदस्त मंजरकशी करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं दर हकीकत ये जुमले इमाम के, हमें समझाते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि आइंदा फ्यूचर में भी कयामत तक कोई भी ऐसी सोसाइटी, इवन जो है जाती तौर पर हर आदमी भी इस तरह की सिचुएशन को फेस कर सकता है और उनको अलर्ट रहना चाहिए। और हमेशा हासिबू कबल अंतु हासिबू, ये जो कहा है ना, मूतु कबल अंत मूतु है, इनमें से हर जुमले हर हादिस के पीछे एक बड़ी दास्तानें हैं, गहराइयां हैं। हासिबू कबल अंतु हासिबू, अपना मुहासिबा करते जाओ, अकाउंटेबिलिटी करो अपने आप को। रात को कहा मोमिन वो है जो रात को सोते वक्त बिस्तर पे जाता है, क्योंकि पता नहीं है कि सुबह जिंदा उठेगा या मुर्दा उठेगा, तो रात को सोचे दिन भर क्या किया था, कितना परसेंट उसमें गलत किया था, कितना परसेंट सही किया था। चौथे इमाम ने भी, ये हुजूर पाक ने भी फरमाया, मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब ने भी फरमाया, दीगर आइमाए मासूमीन अलैहि सलाम की तरफ से भी ये हिदायत आई है, या फरमाया मूतू कबल अन तमूतू, कोई दूसरा मलकुल मौत आके तुम्हें मार दे उससे पहले प्रिपेयर हो जाओ मौत के लिए, ये भी वही है ना, अपने आप को प्रिपेयर रखो, समझो कि अगले लम्हे मरने वाला हूं, जियो इस तरह कि जैसे सारी जिंदगी दुनिया में रहना है, मौत की तैयारी इस तरह करो कि जैसे कल ही मैंने मरना है या कुछ देर बाद ही मरना है। तो बहरहाल अब ये जो मसला है, सैयद शुहदा अलैहि सलाम फरमाते हैं अन्नास अबीद दुनिया, तुखबरे जुमले भी हैं, लोग दुनिया परस्त हो चुके हैं, दुनिया के गुलाम, अबीद यानी गुलामी, लोग दुनिया के गुलाम हो चुके हैं। अन्नास अबीद दुनिया व दीनु लाइकुन अला अलसिनतिहिम, दीन की बातें, मजहबी होने की बातें, मुत्तकी और परहेजगार होने की बातें, ये जबानी जमा खर्च है, इधर से नीचे कुछ नहीं है, ये सिर्फ जबान से बोलते हैं दूसरों को, अपने आप को मनवाने के लिए दूसरों के सामने। दलील क्या है इसकी कि ये जबानी जमा खर्च है, इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है, ईमान की मजबूती नहीं है, अमल में पुख्तगी नहीं है, इसकी दलील क्या है? कह रहे यहूतू नहू मा दर्रत मा आयुषुहुम, अपने आप को मजहबी तब तक कहते हैं जब तक मजहब के नाम पर दाल रोटी चलती रहती है, मजहब के नाम पर माईशत चलती है, माइश मईशत की माइश जो है मईशत का क्या है, जमा है, वही मईशत जिसको आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमी, दुनियावी बेनिफिट्स, दीनदार बन के, नमाजी बन के, परहेजगार बन के, हाजी बन के, जव्वार बन के, मौलवी बन के हैं, आलिम बन के, मुफ्ती बन के, जब तक जो है ये चीजें चलती रहती हैं, यहूतू न हो, यहूता हाउता से, हाउता मतलब गोल चक्कर मारना, चक्कर लगाना, महावता इसी से निकला है, महावता जिसको कहते हैं सहन या गोल दायरे वाली चीज, काबे के ऊपर जो तवाफ करते हैं उसको कहते हैं हाउतिल काबा, काबे के इर्द गिर्द घूमना। यहू तू न हो, दीन के चक्कर काटते हैं, मस्जिद के चक्कर काटते हैं, तब तक कब तक, मादर रद मा आयुषु हम, उसके बदले उनकी दुनिया चलती रहे। तो फैजा मुहिस्सु बिल बला, लेकिन अगर मजहब की वजह से डिफिकल्टीज आने लग जाए, मुश्किलात बढ़ जाए, एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां हलाल और हराम का बड़ा मुश्किल है, गोश्त खाने का दिल करता लेकिन हलाल गोश्त नहीं है, तो यही करूं, मुर्गी उठाऊं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाऊंगा हलाल हो जाएगी है? या बाज लोग टेलीफोन करते हैं, मैं क्योंकि साहिल समंदर में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आए हैं और मैं चीजें वहां बेचता हूं, यहाँ हलाल नहीं है, क्या मैकडोनल्ड्स को से खा सकता हूँ मसलन, क्या केएफसी में तो आगा साहब चिकन ही है ना, वो चिकन खा सकता हूँ? कहते हैं नहीं भाई, कहते हैं चिप्स के अलावा कुछ नहीं है, वही चिप्स खाओ और जिंदा रहो, तो कह रहा है वो तो नहीं हो सकता, मैं कितने दिन चिप्स खाऊं? फिर कहते हैं आ साहब खुदा से बाद में माफी मांगेंगे, अभी तो मैं खाने जा रहा हूँ। यहूतून क्या है, फैजा मुहिस्सु बिलबला, दीन की वजह से डिफिकल्टीज आ गई, खातून अपने शहर में मुल्क में बड़ी दीनदार थी परहेजगार थी, यूरोप में आ गई, देखा डिफिकल्टीज है हिजाब में चलना, मुश्किलात हैं यहाँ बिल्कुल, क्योंकि पिन पॉइंट होके नजर आ रही है, हाईलाइट हो रही है बगैर हिजाब के साथ चलने की वजह से, आस्ता आस्ता जो है चीजों को हैं ड्रॉप करना शुरू कर दिया, करते 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 ड्रॉप कर दिया, आस्ता आस्ता अगर यही सूरत हाल रही तो आगे भी जाया जा सकता है, गारंटीज नहीं है, बस दीन की खातिर मुश्किलात। फ्रांस से फोन आते हैं, आगा साहब अभी 2 दिन पहले मैंने यहीं से आंसर कर दिया उनको, कहा कि बच्चियों के स्कूल का क्या करें, हाई स्कूल का क्या करें, कॉलेज का क्या करें, हायर एजुकेशन का क्या करें, स्कूल के अंदर हिजाब अलाउ नहीं है। तो हमने कहा जनाब आपको सोल्यूशन दिया है, दीन किसी जो है ना, हुजूर पाक ने फरमाया था बुइस्तु बिशरीअतिन समअतिन व सहला, मैं एक बहुत ही आसान और फ्लेक्सिबल शरीयत लेकर आया हूँ। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि मेरी मर्जी से मुड़ जाए, यानी वो जो उस शरीयत के अंदर ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बात हो रही है, नहीं कि मैं अपनी मर्जी से मोड़ू जोड़ू तोड़ू, हर कोई उठे और अपनी मर्जी से उसकी एक तशरी बना के बैठे, ये नहीं मुराद है। तो फरमाया हमने कहा जनाब आप अवल तो अगर पॉसिबिलिटी है तो मूव करें उस मुल्क से, भाई यहाँ तो 90 पत्नी 39 कंट्रीज हैं, चलो 32 सही, आप किसी और जगह मुंह कर लें जहां पे फिलहाल इस तरह की पाबंदियां नहीं है, अगर जी फ्यूचर में आने वाली हैं और आ रही है, अभी तो इस कहीं स्टेप आगे जाने वाला मामला है, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक ऐसी मुसलमान खातून के लिए बाज मुश्तहिदीन ने अलाउ किया है, मुफ्तियों ने अलाउ किया है कि आप स्कूल की टेरिटरी में इंटर हो जाएं, अगर सर से चादर उठाना इनफ है स्कूल के लॉ के मुताबिक तो बस सर से दुपट्टा हटाएं, अब टी शर्ट पहन के मत जाना, अलाउ कर दिया हमने, मुफ्ती साहब ने, मुश्तहिद ने, आयतुल्ला ने अलाउ कर दिया, लिहाजा मैं अब टी शर्ट पहन के जाऊं, स्कर्ट पहन के चले जाऊं, नहीं दुपट्टा हटाना जरूरी है कानून के मुताबिक, दुपट्टा हटा दो, बस सर से दुपट्टा हटा दो, गले को भी महफूज रखो, अपने हिजाब में रखो, गेट से बाहर निकलते ही वापस उस दुपट्टे को ओढ़ दो। अब ये नहीं कि घर से शुरू हो जाए, जैसे जैसे बाज लोग कहते हैं, क्योंकि कल सुबह फिक्र जाफरिया में, क्योंकि मुसाफिर रोजा नहीं रख सकता जब वो हद तरह खुद से शहर से बाहर निकले, और एटलीस्ट आने जाने में उसका मोर देन 42-44 किलोमीटर अगर उसका बनता है, तो बाज लोग क्या कहते हैं रात से ही प्रिपेयर होते हैं, सुबह नाश्ता घर में करके निकल जाते हैं, ये गलत है, ये आपने कफारा कर दिया अपने ऊपर, रोजा भी रखना पड़ेगा कफारा भी देना पड़ेगा, ये गलत तरीका है। तो शरीयत को समझना जरूरी है, अगर मुश्तहिद ने कहा आपको स्कूल की टेरिटरी में एंट्री करते ही हिजाब निकालो, एंट्री से बाहर निकलते ही वापस हिजाब पहन लेना, तो ये नहीं कि घर से ही टी शर्ट पहन के निकल जाना, घर से ही मैन स्कर्ट पहन के चले जाना, इसलिए कि दीन पर अमल दरामद की वजह से डिफिकल्टीज के शिकार हो रहे हैं, मुश्किल जहां जहां पॉसिबिलिटीज हैं दीन ने अहकाम बयान किए हैं, जैसे आप घर खरीद रहे हैं, जैसे आप बिजनेस करते हैं, अगर कि कारोबार सूद का है उसके बावजूद आप क्योंकि डिफिकल्टीज में ना जाएं, और इस्लाम ये भी नहीं चाहता कि मुसलमान जो है हमेशा दूसरों के नीचे कंट्रोल में महकूम हो, मजलूम हो, मकफूर हो, पता नहीं ऐसे मिस्कीन हो, फकीर बन के रहे, तो कुछ सोल्यूशंस दिए हैं जहां जहां पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जहां नहीं है वो अपने दीन पे अमल करना है, अपने ईमान पे अमल करना है। बाज लोगों ने कहा क्या पॉसिबल है कि मैं उस मेज के ऊपर बैठ के खाना खाऊं जहां पर मेरे कुलीग साथ में वाइन पी रहे हैं या नऊज बिल्ला शराब पी रहे हैं, नऊज बिल्ला वनस्तजीरु बिल्ला। हमने कहा अगर कॉमन मेज है, जैसे कि एक रेस्टोरेंट में होता है जहां चार कुर्सियां लगी होती हैं, तो जाहिर है वहां चार बंदों के लिए वो मेज रखी है, मैंने मेज खरीदी तो नहीं है, मेरा एक हिस्सा है, मैं अपने हिस्से में बैठ के खाऊं, अगर कोई आके वहां बैठता है दूसरे कोने पर तो वो अपने हिस्से में बैठ के खा रहा है, जैसे जहाज की सीट में होता है, मेरा नेबर कुछ कर रहा है मैं जिम्मेदार नहीं हूं उसका, ऐसा है कि मैं कॉन्शियसली नियत के साथ पार्टी में एक कॉमन मैन के टेबल के ऊपर आके बैठ जाऊं, पार्टी में सिर्फ अपने दोस्तों को खुश कराने के लिए कि दे आर ड्रिंकिंग एंड मैं तो ड्रिंक नहीं कर रहा, सिर्फ उनका साथ दे रहा हूं, मैं कोक पी रहा था, मैं जूस पी रहा था, ये अलाउ नहीं है, ये आप हम और आप नहीं कर सकते हैं इस तरह के काम, बस बारह ये डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप लॉजिकल तरीके से प्यार और मोहब्बत के साथ वकूलुल लिन्नासि हुस्ना, कुरान मजीद ने गाइड किया कि लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ सिर्फ नहीं, लोगों के साथ कूलू लिन्नासी, लोगों के साथ हुस्ना अच्छाई के साथ पेश आओ, प्यारे तरीके से अगर समझाओगे तो वो समझ जाएंगे लोग, मगर ये कि कोई बीमार आदमी है, मगर ये कि कोई जो है गरज और मरज रखने वाला बंदा है वो नहीं समझ सकता है। बस इमाम फरमाते हैं देखें ये उस 1400 साल पहले दिए गए हिदायत हैं, हम और आपको यूरोप के हिसाब से इंटरप्रिटेशन इसकी लेनी है और समझना है और मिसालें दे के उस चीज को समझना कि हम और आप कैसे अमल कर सकते हैं यहाँ पर। जब इमाम ने फरमाया फइजा मुहिस्सू बिल बला कल्लत दयानून, जब दीन की वजह से मुश्किलात पेश आए तो दीनदार कम हो जाते हैं, कल्ला कम हो जाते हैं, कौन दयानून। अजीजो दीनदार एक तर्जुमा उर्दू में तो हम दीनदार ही करेंगे, लेकिन अरबी जबान में मुतदयिन और दयान में फर्क है, मुतदयिन का तर्जुमा क्या करेंगे उर्दू में दीनदार, तो दयान का तर्जुमा क्या करेंगे दीनदार, दो डिफरेंट लफ्ज है, एक ही तर्जुमा क्यों आ रहा है? तो उर्दू जबान गरीब है, थोड़ी सी बिचारी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अरबी को संभाले, तो असल तर्जुमा कैसे होगा? भाई तर्जुमा लफ्ज तो मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मैं एक लाइन में बता सकता हूँ। वो ये दयान और मुतदयिन में फर्क है। दया मुतदयिन कौन है? वो आदमी जो कि मजहब मजहबी मजहब पर अमल करता है और मजहबी उसूल और जवाबित के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है घर से बाहर तक। ये आदमी, किस आदमी को क्या बोलेंगे? मुतदयिन, तदयुन रखने वाला। तो दयान क्या है? दयान वो इंसान है जो खुद दीनदार है और दूसरों को दीनदार बनाने की कोशिश भी करता है। समझ में आ रही बात? ये दया। इमाम क्या फरमाना चाहते हैं? फइजा मुहिस्सू बिल बला, जब मुश्किल आ जाती हैं दीन की वजह से, तो खुद दीनदार नहीं रहते, एक खुद ईथियस बनते हैं, बेदीन बनते हैं, लिबरल बन जाते हैं, एक दूसरों को भी दीनदार बनाने की कोशिश नहीं करते, बेदीन बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अपनी पार्टी मजबूत करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर सानिया जहरा भी यही फरमाती है, देखो तुम लोगों की मिसाल है, जो तुम लोग तो दीनदार थे, तुम लोग सिर्फ दीनदार नहीं दयान थे, अल्लाह के बंदो क्या हुआ आज? खुद भी गैर मजहबी बन गए, खुद भी ईमान को छोड़ गए, अब दूसरों को भी तो कह ही नहीं सकते, जब खुद दूसरों को भी बेदीन नहीं बनाना चाहोगे ताकि पार्टी मजबूत हो जाए। ये हमारा प्रॉब्लम है। हम और आपके लिए मैसेज क्या है? मैसेज ये है, इन इलाकों में हम रहते हैं ना, देखें ये काफी नहीं है कि मैं यहाँ मजहबी रहूं, मैंने अपने दूसरे साथियों को भी मजहब के ऊपर रखना है। ये कैसे पॉसिबल है? जबानी बताकर, खुतबे देकर, तकरीरें कर, सिर्फ इनफ नहीं है, वे वन ऑफ द क्या कहते हैं, वे ऑफ प्रीचिंग है, वन ऑफ द वे ऑफ तबलीग है। आपको यहाँ पर एक मरकज चाहिए, आपको यहाँ पर एक सेंटर चाहिए, आपको वीकली एटलीस्ट मिनिमम वीकली एक्टिविटी चाहिए। जब तक मरकज नहीं बनता, जब तक एक सेंटर नहीं बनता, आप घरों में ये प्रोग्राम रखें, हर शब जुम्मा रखें, हर मुनासिबत को मनाने की कोशिश करें, माए बहने बच्चे उसमें सब शरीक हो जाएं, बच्चों को ले आए, कोई बात नहीं, बच्चे थोड़ा शोर करते हैं, कोई मसला नहीं है, शोर करें वो एफोर्डेबल है, कोई बात नहीं है, बर्दाश्त कर लें उसको, लेकिन बच्चों के इनडायरेक्टली बहुत कुछ एजुकेट हो रहे होते हैं। बच्चों को कुरान पढ़ाएं, ऑनलाइन पढ़ाएं, यहाँ मस्जिद हैं, दीगर सेंटर्स हैं, उधर भेज दें, बच्चों को कुरान के करीब करें, बच्चों को मोहम्मद वाले मोहम्मद के नजदीक करें, मजहबी तालीमात, अखलाकियात, समाजियात के नजदीक करें, ताकि कल्लत दयानून ना हो जाए, ताकि अगर जो है कल को यहाँ पे ये ना कहा जा सके कि हम जो है यहाँ जो एस्टोनिया में गए थे, बहुत सारे मुसलमान थे, वलाकिन कल्लत दयानू, जबानी वाले मुसलमान थे, असल मुसलमान नहीं थे, ठीक मुश्किलात की वजह सबब भाग खड़े हो गए, दीन को छोड़ दिया, बेदीन हो गए, कहा जी वो मेरे जो ना ये माहौल ऐसा है, क्या करूं, ये फ्रांस से खातून ने, मैं पुर्तगाल में था उस वक्त, फ्रांस से खातून ने फोन किया, उसने कहा क्या मैं वीडियो कॉल कर सकती हूँ, मेरी बच्चियां मेरे साथ हैं दोनों छोटी। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप वीडियो कॉल कर लें। वीडियो कॉल कर लिया तो देखा ना माँ हिजाब में है ना बच्चियां हिजाब में है, बल्कि हिजाब में तो हिची दोनों टी शर्ट पहने हुए हैं और नंगे। मैंने कहा आप घर के कपड़ों में है, मेहरबानी करें आप अगर थोड़ा सा बाहर निकलते वक्त जो कपड़े पहनती हैं वो पहन ले, ताकि मैं आपके साथ डायरेक्ट बात कर सकूं। कहने लगी हम अभी अभी बाहर से आए, नहीं कपड़ों में गए थे बाहर। तो अगर ये सूरत हाल हो जाए, और आगे से वो सवाल भी कर रही हैं सानिया जहरा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा और हजरत अलमदार अब्बास के आपस में जो एक जज्बाती ताल्लुक था उसके बारे में सवाल कर रही हैं। क्या मदीने में, कह रही है मैंने सुना है, क्या मदीने में जब बीबी सवार होना चाहती थी अम्मारी के ऊपर, तो उस वक्त अलमदार अब्बास आगे बढ़े थे और बीबी को सवार किया था? मैंने कहा हाँ जी बीबी को सवार किया था। तो कह रही है जी आगा साहब बहुत शुक्रिया। मैंने कहा नहीं, एक और जुमला भी मेरी तरफ से सुन के जाओ। आपको पता है जब अलमदार अब्बास नहर फरात पर शहीद हो गए और शहादत की खबर खेमे में पहुंची तो बीबी ने किस तरह आवाज दी? वाह हुसैना कहा, वाह अब्बासा कहा, ने कहा वाह हिजाबा, वाह हिजाबा, पहले वाह हिजाबा कहकर पुकारा। आप इसको क्यों नहीं सुनना चाहती हैं? आप इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं देना चाहती हैं? ठीक है आप डिफिकल्ट जगह में हैं, फ्रांस है, यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इतनी भी मिनिमम हिजाब भी नहीं कर सकते, सर पे एक छोटी छोटा सा दुपट्टा नहीं ले सकती हैं? ठीक है बेशक मुनासिब शर्ट पहन ले, मुनासिब पैंट पहन ले, कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं कि एक काली सी बड़ी सी चादर लेके बैठ जाए या सर से पारों तक एक आवर कोट पहन के बैठ जाए, ऐसा तो आपके इस मुल्क में तो बहुत आसानी है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सर्दी रहती है, तो लिहाजा ऑलरेडी जिस्म का एक अच्छा खासा हिस्सा मुनासिब हिजाब में खुद ब खुद डल जाता है। لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معذرت کے ساتھ میں کچھ جو اس وقت کی ضرورتیں ہیں اس کی طرف میں نے زیادہ توجہ دیا. لہٰذا بی بی فرماتی ہیں دیکھیں تم لوگوں کی مثال ایسی ہے جو کرتا کرتا ہے ٹھیک نتیجہ لینے کا ٹائم آتا ہے تو خراب کر دیتا ہے ہر چیز کو. کیوں؟ جی بالکل بالکل.
آپ نے پہلے بیان کیا کہ جنہوں نے خط لکھے تھے وہ لوگ جو ہے وہ کم گناہگار ہوئے, زیادہ گناہگار ہوئے ان سے جنہوں نے خط لکھے ہی نہیں تھے. تو وہ مجھے اس چیز پہ میرا ذہن تھوڑا سا اٹکا ہوا کہ آپ کیسے مطلب اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ اب کچھ ایسے مطلب اس وقت صاحب بھی موجود تھے, ان کے اولاد بھی موجود تھی جو مکہ میں تھے مدینہ میں تھے, جو ان کے ساتھ نہیں چلے تھے, لیکن انہوں نے ایک درمیانی راستہ پکڑا. انہوں نے کہا جی ہم اس سیاست میں حصہ ہی نہیں لیتے. کئی ایسے احادیث میں بھی آپ کو وہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ ہم اس الجھن میں پڑتے ہی نہیں, حکومت کا اور ان کا معاملہ ہے ہم اس میں نہیں پڑتے. کئیوں نے کچھ لقب دیا کچھ لقب دیا. اب جنہوں نے خط لکھا تھا وہ وجہ بنے, امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف اپنے دو سفیر بھی بھیجے, مطلب ایک بصرہ کی طرف ایک کوفہ کی طرف بھیجے, پھر کوفہ سے جب کنفرمیشن ملی تب ادھر سے.
آپ کا سوال کیا ہے میرے سمجھ میں؟
سوال یہ کہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ دو طرح کے طبقہ تھے, ایک جنہوں نے خط لکھے تھے اور جو ساتھ جنہوں نے خط لکھے ہی نہیں تھے. تو آپ نے یہ کہا کہ جنہوں نے خط نہیں لکھے تھے وہ تو بہت زیادہ مطلب زیادہ گناہگار تھے, تو وہ کیسے زیادہ گناہگار
میں نے کہا جنہوں نے ساتھ نہیں دیا شروع سے ڈے ون سے وہ زیادہ گناہگار ہیں, اور اہل کوفہ اس لیے گناہگار ہیں کہ ان کے اوپر انویسٹ ہو چکا تھا پچھلے اگر آپ نے دو یا تین جو شرح تھی اس کی اگر اس کو آپ نے اٹینڈ کیا ہو تو اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کیسے 4 4.5 سال مولائے کائنات کوفے میں رہے, کیسے ثانیہ زہرا خود کوفے میں تشریف رکھی, وہاں پر خود آپ نے تربیت کی ان لوگوں کی. فکری طور پر کوفہ پاپولیرٹی اختیار کر گیا تھا کہ کوفے کے اکثریت شیعہ یا علی بن ابی طالب سے بلانگ کرتے ہیں, لہٰذا ان سے زیادہ ایکسپیکٹ تھا کہ یہ لوگ زیادہ اچھا رول پلے کریں گے, اور انہوں نے ہی 18,000 خط لکھا تھا امام کے حضور کہ آپ تشریف لے کے آئے. ہم نے ان خطوط کو بھی کوٹ کیا کہ فرمایا لیس لنا امام غیرک, ہمارے لیے آپ کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں, ہم کسی کو بلیو ہی نہیں کرتے, ہم نہ شامیوں کو مانتے ہیں نہ کسی اور کو مانتے ہیں, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں وتھ ریسپیکٹ, لیکن ہم ان کو اپنا لیڈر نہیں سمجھتے, اپنا امام بن جانب اللہ نہیں سمجھتے. لیس لنا امامن غیرک الاجل یا مولایا, یہ ان کے ورڈ تھے, یہ ان کے الفاظ تھے, اس لیے اتنا سخت خطبہ ان کے لیے مخاطب کیا. لیکن دوسری جانب کیا اس کا مطلب ہم یہ لے لیں کہ جو لوگ مکے میں بیٹھے اور امام کا ساتھ نہیں دیا وہ بری الذمہ ہے, ان کی کوئی مسٹیک نہیں ہے, جو مدینے میں بیٹھے رہے ساتھ نہیں آئے بغیر کسی شرعی وجہ اور سبب کے, یا جو یمن میں تھے جن جن تک یہ میسج پہنچا ہے امام نے پہنچایا ہے وہ بھی مجرم ہے برابر کے, وہ بھی اس میں شرعی کے جرم ہیں. لیکن ان مجرم اور ان مجرم میں فرق یہ ہے کہ ان کی کوالٹی اچھی تھی, یہ تربیت یافتہ لوگ تھے, لہٰذا ان کی زیادہ غلطی بنتی ہے. صلوات بر محمد و علی. لہذا اب بی بی جو ہے اس لیے کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے تو ایسا کیا ہے, یہ ایک منزل تک آپ ساتھ آ گئے, مشکلات آ گئی تو اس منزل میں کیا کر دیا ہمارا, تم نے ساتھ چھوڑ دیا. دیکھیں عزیزو کیوں اتنے سخت الفاظ استعمال کیا بی بی نے, آؤں گا اس کو مزید ڈیپلی ہم کھولیں گے. اور بگننگ آف خطبہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہاف لائن بھی نہیں ہم دو سنا کی اور ڈائریکٹلی بہت ہی سخت جملوں کے ساتھ بی بی اٹیک کرتی ہیں اہل کوفہ کو, اصل میں جھنجھوڑ رہی ہیں, بیدار کرنا چاہتی ہیں, اٹھانا چاہتی ہیں. چلتے ہیں ذرا نہج البلاغہ. مومن عوام کا رول ایک مسلم سوسائٹی کے اندر کیا ہے, ان کا سٹیٹس کیا ہے, ان کی ذمہ داری کیا ہے, ان کے فرائض کیا ہیں. جیسے آپ یہاں رہتے ہیں, آپ کی ایک کمیونٹی ہے, مسلمان کمیونٹی یہاں پر ہے, ٹھیک ہے چھوٹی ہے, لیکن ان میں جو لوگ سمجھدار ہیں, جو لوگ اچھے ایمان کے حامل ہیں, جو لوگ چیزوں کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ان کا سٹیٹس کیا ہے, ایک ان کی ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری کیا ہے. دو, مجھے نہیں پتا آپ نے یقیناً یہ سنا ہوگا, پڑھا بھی ہو, توجہ شاید نہ دی ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں. ہم جا رہے ہیں ناجو بلاغا کے آستانے میں, और नाजुल बलागा का जो मोस्ट पॉपुलर पोर्शन या हिस्सा है या चैप्टर है वो है वो मिस्र के गवर्नर मालिक अश्तर नखई के नाम लिखा गया मौला का अहदनामा, वो जो तहरीरी तौर पे दे दिया है, जिसको यूनाइटेड नेशन ने भी दुनिया के तमाम हुक्मरानों के लिए एक इखलाकी गाइडलाइन के तौर पे एक्सेप्ट कर दिया और रेकमेंड कर दिया। उसके अंदर कुछ जुमले हैं, मालिक इब्ने अश्तर नखई से मुखातब होकर फरमाते हैं, मालिक देखें सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन उनमें जो प्योर मोमिनीन हैं, अच्छा ईमान के हामिल लोग हैं, उनके बारे में जहन में रखना कि ये लोग दीन का सुतून है, ये लोग दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है, विलायत दीन का सुतून है, हज भी दीन का सुतून है, जकात भी दीन का सुतून है। ये रिवायात है बुनियाल इस्लाम वाला खमसा का, इस्लाम जो है इस्लाम पांच पिलर्स के ऊपर बनाए गए हैं, अस्सलातु व ज़कातु व सोम व हज व विलाया, मानूदिया फिल इस्लामी मानूदी का मानूदिया फिल विलाया, लेकिन सब में जी जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सुतून है वो इमामत और विलायत है, मुस्लिम कयादत लीडरशिप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने पहले सुना है ना, अस्सलातु अमूदुद्दीन, ये भी हमने पहले सुना है ना, लेकिन अवाम अच्छे किरदार के मालिक मोमिन बा ईमान अवाम भी दीन का सुतून है। गाइडलाइन किसको मिल रही है? गवर्नर को, गवर्नर को कह रहे हैं, लिहाजा आपने मोमिन अवाम की तरफ जब आप देखेंगे, इनके साथ जब आपकी कोई डील होगी तो एक बात ध्यान में रखें, आप दीन के एक सुतून के साथ बात कर रहे हैं, सो उनका उनको उनका मकाम मिलना चाहिए और उनसे उनकी ये जिम्मेदारी भी आपने लेनी है कि वो एज ए सुतून अपना रोल प्ले करें। वो जुमले क्या है अरबी में तबरुकन पढ़ता हूं, कहते हैं मालिक इन इमादुद्दीन, इन इमादुद्दीन, इमाद अमूद की जमा, असलातु अमूदुद्दीन, इमादुद्दीन यानी क्योंकि ज्यादा है मोमिनीन इसलिए जमा का वो इस्तेमाल किया, इन इमादुद्दीन व जमाउल मुस्लिमीन अल उद्दतु लिल आदा अल आमतु मिनल उम्मा औ आमतु मिनल नास। समझ में आ रहा है? बस आप लोग आज के दौर में आप मोमिनीन, आप बाईमान लोग दीन का सुतून है, आप जान ले या ना जान ले, खुद को पहचाने या ना पहचाने, अपनी जिम्मेदारी निभाएं या ना निभाएं, लेकिन आपके मौला वो आका, आपका दीनो मजहब, आपका कुरान, आपका खुदा सानिये जहरा ज़ैनब कुबरा सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मासूम अली असगर से लेकर हबीब इब्ने मज़ाहिर तक सबका ये कहना है और ये तवक्को आपसे रखी जा रही है कि हर दौर में उस दौर की मोमिन अवाम दीन के लिए एज ए सुतून अपना रोल प्ले करेगी। आप यहां रहें या किसी और जगह में रहें, डजंट मैटर, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आते हैं जरा इस पॉइंट समझते हैं, बस मैं एंड की तरफ जा रहा हूं। सुतून का काम क्या है? किसी बिल्डिंग में एक पिलर का काम क्या है? वो उस बिल्डिंग का बोझ उठाता है ना, वो उस बिल्डिंग का बोझ उठाता है। लिहाजा दीन का सुतून जो भी होगा उसने दीन का दर्द सहना है, दीन का बोझ उठाना है, दीन के लिए कुर्बानी देनी है। मोमिन अवाम दीन के लिए पैसा देती है, जान देती है, मोमिन अवाम दीन के लिए वक्त निकालती है, मोमिन अवाम दीन के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार होती है। बस ये दीन का सुतून है। अगर दो मिनट के लिए ये मोमिन अवाम अपना किरदार निभाना छोड़ दे, साइड पर हो जाए, तो क्या होगा? दीन का एक पिलर कम हो जाएगा। जिस तरह हम और आपके आमाल में, हम और आपके ईमान में, अगर हम नमाज हटा दें, अगर हम रोजे को हटा दें, अगर हम जकात को हटा दें राह खुदा में देना, अगर हम जो है हज को हटा दें, तो क्या हो जाएगा? दीन का एक बड़ा हिस्सा खाली हो जाएगा, सुतून नहीं रहेगा उसके अंदर। लिहाजा दीन खड़ा है कुछ सुतूनों के ऊपर, उसमें ये पांच सुतून है, छठा सुतून मोमिन अवाम है, और जहन में रखें मरकजी सुतून विलायत है, बाकी सुतून इसके गिरित गिरित में खड़े रहते हैं, इनमें से हर सुतून को अपनी जगह पर खड़ा रहना जरूरी है।
मोहम्मद वाल मोहम्मद
सलावा। तो अजीजों जहन में रखें, कोई ये नहीं कह सकता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई कहता है तो अपने ईमान पर शक करे, अपने मोमिन होने पर शक करे। हम कह ही नहीं सकते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये कह नहीं सकता हूं कि मेरे इनकम के अंदर किसी और का हक नहीं है, क्योंकि मेरे खून पसीने की कमाई है। को मैं क्यों दूं इमाम बारगाह के लिए, मैं क्यों दूं मजलिस के लिए, मैं क्यों दूं मदरसे के लिए, मैं क्यों दूं सेंटर बनाने के लिए, मैं क्यों दूं, मैं खुम्स क्यों दूं, मैं ज़कात क्यों दूं। नहीं कह सकते हम ये बात अगर हम दीन के सुतून हैं। कोई मुसलमान ये बात नहीं कह सकता, कोई मोमिन ये बात नहीं कह सकता। अगर कहता है तो वो अपने किरदार से इनकार कर रहा है, अपने स्टेटस को गिरा के पस्ती में डाल रहा है। उसको स्टेटस मिला है, मौलाए कायनात ने स्टेटस दिया है दीन के सुतून का। जब वो फरार अख्तियार करता है तो दीन के उस हिस्से में खलल ईजाद कर रहा होता है। लिहाजा इसको भूलना नहीं है। आप यहाँ रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ साहब नान मुस्लिम माशा यहाँ मुश्किल हैं। हाँ दीनदार हैं ना आप, तो मुश्किल तो आपके साथ होंगी, डिफरेंट है। आप मुमकिन है कि किसी और मुल्क में हो, वहां आपकी जान को खतरा हो, मुमकिन हो वहां अमन अमान का खतरा हो, मुमकिन है वहां पर एनवायरमेंट के मसाइल हो, लोड शेडिंग के मसाइल हो, गर्मी सर्दी के मसाइल हो, सैलाब के मसाइल हो, जिलजिले के मसाइल हो। इन मसाइल से आप आजाद हैं, कंफर्ट एक जोन में खड़े हैं, यहाँ पर कोई डिफिकल्टीज नहीं है। तो आप इतने हम और आप जो है इतने जो है ना बर्गर वाले ना बन जाएं, और क्या कहते हैं मैकडोनल्ड्स और केएफसी वाले ना बन जाएं कि मक्खी आ जाए तो भी घबरा जाएं, मच्छर आए तो भी चीख उठें, मच्छर आ गया। ये नहीं, इतना नाजुक नहीं बनना। कैसे बनना है? सुल्मुल ईमान नाफिजतुल बसीरा। हजरत अलमदार अब्बास की सिफात ये बयान की गई है मासूमीन ने। हमारे और आप में, क्योंकि हम हीरोगिरी पसंद करते हैं, तो हम चाहते हैं हजरत अब्बास को एक पहलवान बना के पेश करें, जिनके जिस्म कद ये था वो ये था। ठीक है, वो सब सही है, लेकिन इससे नुमाया सिफात जो आइमा ने बयान की है वो कुछ और है, हमारे आपके दरमियान कुछ और है। क्योंकि हमारे पास हीरोगिरी का जो कंसेप्ट है वो कुछ और है। असल में हीरो हम उसको समझते हैं जो 10 आदमियों को जमीन पे पटक दे, उसको हम हीरे समझते हैं। हम उसको हीरो मानने के लिए तैयार नहीं है कि राह है खुदा के लिए, खुदा की रजा के लिए। अगर कोई बदमाश मुस्टंडा किसी की तौहीन करके लआब दहान फेंक के गुस्ताखी करे तो अपने गुस्से को पी जाए, हम इसको हीरो नहीं समझते। समझ में आ रही है बात? मैं कहां की बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है ना?
मोहम्मद सलावा
ये असल हीरो सल्ले अला मोहम्मद, यार जो दीन की खातिर, जो दीन की खातिर जुल्फकार उठा सकता है, तलवार उठा सकता है, जो दीन की खातिर लागर कमजोर से घोड़े पे चढ़ के मैदान में चला जाता है। असाब कहते हैं अली आपने कमजोर से घोड़े में सवारी की है, मैदान जंग में ये क्या काम आएगा? मुल्ला फरमाते नहीं, मुझे यही घोड़ा काफी है, मुझे किसी दूसरे सरपट भागने वाले घोड़े की जरूरत नहीं है। इसलिए कि ना मैं दुश्मन को देखकर फरार करता हूं और ना जो मुझसे फरार करता है उसके पीछे भागता हूं, तो मुझे तेज दौड़ने वाले घोड़े की जरूरत ही नहीं है। ये शुजाअत, ये बहादुरी रखने वाले अली, अगर आप अपने मौला के इंतहाए उसको देखना चाहते हैं तो देखें, रजाए इलाही के लिए उस गुस्ताखी का जवाब नहीं देते। अलमदार अब्बास की पता है क्या सिफत बयान की है, जो हम और आप सबको उसके पीछे चलना है? सुल्बुल ईमान, मजबूत रासिख अकीदा रखने वाला, मजबूत ईमान का मालिक। नाफिजतुल बसीरा, दीन और जमाने और वक्त के तकाजों को दुरुस्त जज करने वाला, दुरुस्त समझने वाला, बसीरत की इंतहा रखने वाला। नाफिजा कहते हैं रोशनदान को, बसीरत की रोशनदान, यानी जो भी अलमदार अब्बास के करीब जाएगा वो बाबसीर बनता चला जाएगा, बसीरत आती जाएगी उसके अंदर। तो लिहाजा ये जहन में रखें, सानिया जहरा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा खुतबे के इस आखिरी हिस्से में फरमाती हैं, अला वहल फीकुम इल्ला सलफ नतफ, फिर फरमाती है वसदर शनफ मिल उल इमा मिल कुल इमा व गमजुल आदा, ये आखिरी जुमले हैं तकरीबन। फरमाती है क्या तुम में मगरूर मुतकबिर तकबर वाले कीना परवर चापलूस और किराए के लोगों के अलावा भी कोई है? अल्लाह, देख रहे हैं, कहता है तुम लोगों के दरमियान غرور میں مبتلا، تکبر میں مبتلا، کینہ پرور لوگ، چاپلوس لوگ، اپنے آپ کو کرائے پہ دینے والے، یعنی ہیومن فار رینٹ رینٹل ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی ہے بندہ؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں میجورٹی تمہاری ایسی ہے، کیونکہ سنسیٹیو ٹائم پر تم لوگوں نے یہی کام کیا. یہ جو غمزۃ الاعدا ہے، یہ کرائے پہ دینے والے، اس کو کہتے ہیں دشمن کے معمولی اشارے پر اپنے آپ کو فار رینٹ کرنے والے. یہ آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں. پھر فرماتی ہیں اساءت ما قدمت لکم انفسکم ان سخط اللہ علیکم فی العذاب انتم خالدون. کہہ رہا ہے، فرما رہی ہے کہ دیکھیں تم لوگوں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے، تم لوگوں نے کچھ جو ہے باقی نہیں رکھا اپنے لیے، کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، کوئی راستہ نہیں رکھا ہے اپنے لیے کہ جہاں سے توبہ کر سکے، جہاں سے واپسی آپ آ سکیں. یعنی اصل میں یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. سورہ بقرہ کے اندر جس عذاب عظیم کی بات کی گئی ہے وہی یہاں فرماتی ہیں، کہ تم نے جو کام کیا ہے، جو جرم انجام دیا ہے، بعض جرم ہوتے ہیں، بعض گناہ ہوتے ہیں، انسان کے لیے موقع ہوتا ہے واپسی آنے کا، چانس ملتا ہے کہ وہ واپس آ جائے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں اس کے بعد واپسی نہیں ہوتی. آپ آیت اللہ دستگیر کی گناہان کبیرہ پڑھ لیا، اگرچہ گناہان کبیرہ پورے کورٹ وہاں پر نہیں کیا آیت اللہ دستگیر نے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ واپسی ممکن نہیں ہے. نواسے رسول کے قتل میں شریک ہوں، چاہے خاموشی کے ذریعے سے ہی، چاہے تماشا بینی کے ذریعے سے ہی، چاہے دل سے نہ چاہتے ہوں تو بھی، لیکن آپ تھے اور نصرت کے لیے نہیں اٹھے. اسی لیے یاد ہے امام نے کیا فرمایا تھا، بعض لوگوں کو کہا تھا کہ اگر تم میرا ساتھ دینا نہیں چاہتے ہو نا، یہ حر جوفی کو کہا تھا، تو کہا تھا مجھ سے دور چلے جانا جہاں تک میری آواز تم تک پہنچے نہیں، وگر نہ عذاب علیم میں مبتلا ہو جاؤ. عذاب علیم میں میں آتا ہوں توابین کی طرف انشاءاللہ، لاسٹ اس میں توابین کی طرف آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ آپ آنسر کوشن سیشن بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم اسی طرح چل لیتا اسی طرح چلتے ہیں. لہذا پھر فرماتے اتب، پھر آخر میں دوبارہ فرماتی ہیں اتبقون وتنخبون، اب پھر سے تم لوگ جو ہے رونے لگ رہے ہو. ظاہر یہ خطبہ بیان کیا پھر سے گریہ کرنے لگے. پورے بازار میں پہلے خاموشی تھی، خاموشی سے پہلے رونا دھونا تھا، خطبہ شروع ہو گیا تو خاموشی شروع ہو گئی، خطبے کے جب اس حصے میں پہنچ گئی تو پھر سے رونا شروع کر دیا. شاید یہ ندامت کے آنسو تھے، ظاہری طور پر، علامتی طور پر، ٹیمپریری طور پر افسوس کے آنسو تھے، دکھ کے آنسو تھے، غم کے آنسو تھے. نیچرلی ایک جو انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں جو کچھ دیر کے لیے امٹ کے آتے ہیں، اس قسم کے آنسو تھے یا کیا تھے؟ یہ اگلے جملوں میں واضح ہوتا ہے. فرماتی ای واللہ فبکوا کثیرا وضحکوا قلیلا، ہے خدا کی قسم اب تم لوگ جو ہے نا زیادہ رو گے اور کم ہنسو گے. تم لوگ چیخ رہے ہو، رو رہے ہو، تو یہ اب تمہارا جو ہے زیادہ رونا ہوگا تمہارے نصیب میں، کم تمہیں ہنسنا ہوگا. اب آتے ہیں عزیزو، اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہوگا، اس قسم کے الفاظ اور خطبے کا ہدف کیا ہے؟ بس میں پوائنٹس بیان کر رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، انالائسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی ہم کر چکے ہیں اور پھر مصائب کی طرف ہم بڑھتے ہیں. نمبر ایک، اب بھی ثانیہ زہرا زینب کبرا سلام اللہ علیہا ان لوگوں کو جگانا چاہتی ہیں، بیدار کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ دینی اعتبار سے سو گئے ہیں، مر نہیں گئے. یہ سمجھنا تب پاسبل ہے جب انسان قرآن و روایت کو غور سے اسٹڈی کرے اور ان کی حکمت عملیوں کو، الفاظ کو، کلمات کو غور سے اسٹڈی کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کون سا لفظ کہاں پر استعمال کیا ہے. یعنی اب بھی یہ رمق موجود ہے کہ وہ حقیقت میں پلٹ سکتے ہیں، یہ امید رکھی ہے. ویسے بھی ایک فریضہ شرعی ہے، حجت تمام کرنا ضروری ہے. اللہ کے نمائندے فوراً کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں لیتے ہیں، فوراً کسی کو کراس نہیں مارتے ہیں. حتیٰ اسی یزید پلید کے بارے میں چوتھے امام سے سوال کیا، از اٹ پاسبل کہ یہ توبہ کر لے؟ تو امام نے فرمایا ہاں ممکن ہے توبہ کر لے، خدا قبول کر سکتا ہے اس کی توبے کو. لوگ ناراض ہو گئے، یزید جیسوں کی توبہ خدا قبول کر لے گا؟ فرمایا خدا کی مغفرت اور رحمت زیادہ وسیع ہے یا یزید کا جرم؟ خاموش ہو گئے. ये जवाब नकजी कहते हैं हम उसको, जिसको आप जो है एक मशहूर स्कॉलर हैं जो इसको हमारी जबान में कहते हैं फकी वाला जवाब। ये फकी वाला जवाब है इमाम की तरफ से दर हकीकत, अगर गौर करें इसके अंदर, क्योंकि समझने वाले की जहनी लेवल ही ये था, तो इमाम ने उसी हिसाब से जवाब दे दिया, ज्यादा एनालिसिस नहीं किया। उसके बाद इमाम ने इरशाद फरमाया, लेकिन यजीद को कभी तौबे की तौफीक नहीं मिलेगी, लिया नस्ल बे तौफीक हो चुकी है यजीद।
अहले बैत के दुश्मनों पर लानत,
और हुआ भी
मोहम्मद
ऐसा।
सलावात,
और हुआ भी ऐसा, नतीजा भी यही निकला, तो कभी भी उसको ये तौफीक मिली, वो मिलती भी कैसे है। लिहाजा ऐसे लोग अब भी हैं कूफे में जिनका ये इम्कान है कि वो पलट जाएं, ये इम्कान है कि वो मरे नहीं हैं, अभी सो चुके हैं मजहबी एतबार से, उनमें दोबारा वो जज्बा बेदार हो सकता है। अजीजो जहन में रखना, दीनी एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो मेडिकल की है, लेकिन मजहबी उमूर में भी इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं रिलीजियस पैथोलॉजी, आसिब शिनासी या पैथोलॉजी। कूफे की जो रिलीजियस पैथोलॉजी है, अगर उसको उठाकर हम देखें, तो सानिया जहरा की कोशिश ये है कि जो इस वक्त टेम्परेरी जज्बात उमट के आए हैं, ये जज्बे में बदल जाए, है ना। ये जो वैसे आंसू का बह रहे हैं, ये आंसू एक जबरदस्त किस्म के डायरेक्शन पर चले जाएं, जो जज्बे में कन्वर्ट हो सकते हैं। नतीजा क्या निकलता, पहले मैं शुरू से कहता रहा हूं, नतीजा ये निकलता कि इसी वक्त फिर से करबला बरपा हो जाती। ये तो नहीं थी कि करबला सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अकेले का फरीजा था, सिचुएशन ऐसी थी कि अभी इमाम हुसैन का वारिस मौजूद है, इमाम वक्त मौजूद है, अली अली इब्न हुसैन जैनुल इमाम जैनुल आबदीन मौजूद है, अगर ये खड़े हो जाते हैं, अगर ये उठ खड़े हो जाते, तो इमाम वहीं से दोबारा उसी काम को आगे बढ़ाते, ये खड़े नहीं हो गए। इसीलिए इस तरह का आप देखते हैं यहाँ मुजम्मती अल्फाज ज्यादा है, जज्बा दिलाने वाले अल्फाज, उनकी फिक्रों पर, अकलों पर, रूहों पर चोट पहुंचाने वाले अल्फाज, डायरेक्ट बराह रास्त हकीकतों को खोल के बयान करने वाले अल्फाज, इतने सख्त और करख्त किस्म के अल्फाज, ताकि उनकी मुर्दा रूहों पर, फिक्रों पर चोट पड़े और उनमें बेदारी आ जाए, और दर्द का जो एहसास वो कर रहे हैं, जो अलामती दर्द का एहसास है, ये दर्द का एहसास एक हकीकी दर्द के एहसास में बदल जाए। नतीजा क्या निकला, बेशक फौरी तौर पे नतीजा नहीं निकला, मैं इशारा कर रहा हूं, भाई ने सवाल भी किया है, इसलिए आप देखते हैं कि वाकई करबला के कुछ ही अरसे के बाद छोटी बड़ी तहरीकें शुरू हो गई। ठीक है, इनमें से बहुत सी तारीखें गैर संजीदा थी, मिच्योरिटी नहीं आई थी, स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं रही, हिकमत अमली ठीक नहीं रही, लेकिन जज्बा आ गया। जज्बा क्या, चाहे वो एहसास और निदामत का जज्बा हो, एहसास गुनाह हो, या फिर ये है कि एहसास इंतकाम हो, या एहसास राय हक की बका हो, लेकिन उठने शुरू हो गए। सबसे पहले पता है कौन से उठे हैं, तवाबीन बाद में उठे हैं, बिकर बिन वाइल की कबीले की खवातीन उठी है, खवातीन, मर्दों ने जुरअत खत्म हो गई, खवातीन में जुरअत आ गई। सबसे पहले ये नारा जिसको बाद में तवाबीन ने लगाया, बाद में मुख्तार ने भी लगाया, बाद में हर उठने वाली तहरीक ने लगा दिया, यहां तक कि अली इब्ने जैद, जैद इब्ने अली ने भी इसी को लगाया, और किसी ने भी लगाया, या लसारातिल हुसैन, पहला स्लोगन बिकर बिन वाइल की कबीले की एक खातून ने यह स्लोगन लगाया, सबसे पहले इस खवाती इस स्लोगन की मौजिद और ईजाद करने वाली एक खातून है। मसला यह है कि हम इन चीजों को इतनी डीपली जाना नहीं चाहते। सबसे पहले उस खातून ने उठ के कहा, खवातीन से कहा, कहा कि हमारे मर्द मर चुके हैं, उनमें से बाज लश्करों में साथ में जा चुके हैं, उठो चलो, आले रसूल के जिनाजे रेगिस्तान करबला में पड़े हुए हैं। उसने एक हाथ में एक बेलचा या एक कुदाल उठाया और नारा लगाया, या अला सारातिल हुसैन, टीले से नारा लगाते हुए करबला की तरफ दौड़ उठी, और ये नारा फिर सारी खवातीन उठ के आ गई, या अला सारातिल हुसैन। उसके बाद कूनों में दुबके हुए, छुपे हुए बेगैरत मर्द भी उठ के आ गए, तो सबसे पहले ये जुरत खवातीन की तरफ से आ गई है। इसलिए हम कहते हैं करबला जहन में रखे, मर्द और ये औरत दोनों की तरफ से, एक मोमिन मर्द, मोमिन औरत, دونوں کی مومنات و مومنین، مسلمات و مسلمین کی طرف سے برپا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی قیادت امام عالی مقام کے ہاتھوں میں ہے، لیکن اس کی حدوث و بقا و اس کو پہنچانا اور اس کو باقی رکھنا اور میسج کو آگے تک پہنچانا اور زندہ رکھنے میں خواتین کا بھی اسی طرح کردار ہے جس طرح مردوں کا ہے. لہذا مرد نہ سمجھے کہ ہر میدان میں ہمارا ہی کردار رہا ہے. بکر بن وائل کوفے کے اندر جب ابن زیاد کی جانب سے بعد میں ابن زیاد کو ہٹانے کے بعد یزید نے اسی ابن زیاد کے کسی عزیز کو کوفے کا گورنر بنایا، جب کربلا میں قتل امام حسین میں شریک تھا، کوفے کی خواتین اٹھی اس وقت بھی. سب سے پہلے کوفے کی خواتین نے اٹھ کے ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے کہہ رہے، یہ فلاں کی ماں، فلاں کی بہن، فلاں کی زوجہ تمہیں پتا ہے؟ پھر ہمارا گورنر کون آ رہا ہے؟ وہ ملعون جو قاتل نواسۂ رسول ہے. تو کہہ رہے پھر ہمارے مردوں نے تو کوئی میٹنگ نہیں کی، مسجد میں کسی کو بلایا نہیں، کہا ہمارے مرد بک چکے ہیں، ہمارے مردوں کا ایمان بک چکا ہے. تو کہا ہم خواتین تو برداشت نہیں. خواتین اٹھی کوفے میں، اجتماع کیا مسجد کے سامنے، شور کیا، کہا کہ ہم اس کو گورنر تسلیم نہیں کریں گے، اگر ایسا ہے تو تم ہمیں طلاق دو. بعض نے کہا ماں ہوں میں، تمہیں آگ کر دیتی ہوں، نکال دیتی ہوں اپنی مادرانہ محبت سے، بیٹے کو نکال دیتی ہوں اگر تم نے اس کو ایز اے یزید کے گورنر کے طور پر قبول کرنا ہے. یہ مومنٹس رہی ہیں، التوابین بعد میں اٹھے. جناب مختار آخری اس سلسلے کی کڑی ہے جس نے انتقام لیا ہے. اس کا یہ نہیں کہ ان خطبوں کی کوئی تاثیر نہیں بنی، ان جملوں کے کوئی اثرات پڑے ہیں، لیکن لیڈرشپ کا فقدان، جذباتی عمل بغیر سوچے سمجھے، بغیر پلاننگ کے جو اقدامات کیے گئے، جس میں سب سے زیادہ توابین نظر آتے ہیں، مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے، سیٹسفیکیشن ہو گئی ان کو، اپنے دل کی بڑاس نکال لی انہوں نے. اگر پلان کے ساتھ کرتے حضرت مختار کی طرح تو وہ انتقام بھی لے پاتے. توابین کا ہدف یہ تھا کہ بس ہمیں تسکین مل جائے. جیسے ہم میں سے بہت سوں کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں شریک ہو جائیں، کیسی بھی باتیں ہو رہی ہوں، کیسی بھی حرکتیں ہو رہی ہوں، لیکن میں سیٹسفائی ہو جاؤں. اصل میں میں اپنی سیٹسفیکیشن چاہ رہا ہوں، نہ کہ میں دین سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں دین کو اپنے مزاج سے سمجھنا چاہتا ہوں، نہ دین کے مزاج میں جانا چاہتا ہوں. یہ دو الگ چیزیں ہیں. میں دین کو اپنی مرضی، اپنے مزاج، اپنی پسند کے حساب سے چاہتا ہوں، نہ دین کی پسند میں خود کو ڈالنا چاہتا ہوں. اللہ اقبال نے کیا کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزو کافی وقت آ چکا ہے ثانیہ زہرا کے خطبے کے آخری جملے ہیں، فرماتی ہیں ویلکم، تم لوگوں کے اوپر پھٹکار ہو خدا کی طرف سے. اتدرون، کیا تم لوگ جانتے ہو، ایو کا بدن لمحمد فرائی، تم نے جگر گوشہ رسول کو تم لوگوں نے تحتیک کیا ہے. وَأَيِّ دَمٍ لَهُ سَفَقْتُمْ، جانتے ہیں تم نے رسول اللہ کے کس قسم کے خون کو بہایا ہے، کس رشتے کے خون کو بہایا ہے. وَأَيِّ كَرِيمَةٍ لَهُ أَصَبْتُمْ، تم جانتے ہیں کتنی باعظمت اور کرامت والی ہستی کو تم لوگوں نے تہ دیکھ کیا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُونَ، تم جانتے ہو اس ہستی کی شہادت کے اوپر صرف زمین والے نہیں روئے، صرف تمہارے جذباتی آنسو نہیں ہیں، آسمان والوں نے سب سے پہلے گریہ کیا ہے، ملائکہ سب سے پہلے رو گئے ہیں، آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب سے پہلے رو چکے ہیں. یعنی قتل امام حسین نے آسمان کو بھی رلا دیا، زمین کو بھی رلا دیا، اہل آسمان بھی رو گئے، اہل زمین کو بھی رونا آ گیا. جب یہاں تک خطبہ پہنچتا ہے اس وقت زین العابدین امام سجاد کہتے ہیں اسکتی امتی، کہنے بس کر دیجئے پھوپھی اماں، انتی عالمتن غیر معلمہ وفہیمتن غیر مفہمہ. پھوپھی اماں میں جانتا ہوں کہ آپ وہ با عظمت خاتون ہیں جسے دنیا میں کسی استاد نے نہیں سکھایا ہے، آپ نے عصمت و وحی سے تعلیم حاصل کی ہیں، آپ بنی ہاشم کی عاقل ترین خاتون ہیں. عزادار و بشر ابن حزیم ایک راوی ہیں جو مدینے سے اس وقت جو ہے کوفہ پہنچا تھا، اس نے کوفے کی کچھ منظر کشی کی ہے، اور میں جو ہے مصائب کی طرف ہی جا رہا ہوں. بشر بن حزیم کہتا ہے کہ میں کوفہ شہر میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کوفہ شہر میں ایک عید کا سا سما ہے، شہر کی دیواروں کو پھر سے جو ہے رنگ کیا گیا ہے، سفیدی کی گئی ہے، شہر صاف ستھرا کیا گیا ہے، اور شہر میں کچھ اس طرح کا ماحول ہے جیسے کہ عید میں किया जाता है। कहता है कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि हर लोग टोलियों की शक्ल में, कुछ लोग वहां बैठे हैं, के कहे लगा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं नए कपड़े पहने हुए हैं, गले मिलके मुबारकबादियां दे रहे हैं। और इसी असना में मैं ये भी देख रहा हूं कि बाज लोग दबे दबे अंदाज से गिरिया कर रहे हैं और रो रहे हैं। मैंने ये मंजर देखा कूफे के अंदर, कह रहे मैं परेशान हो गया कि शहर को क्या हुआ है। कुछ लोग हैं कि खुशियां मना रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जो खौफ के आलम में डरे डरे दबे दबे गिरिया कर रहे हैं। मैं शहर के अंदर दाखिल हुआ, करीब देखा एक बुजुर्ग उम्र शख्स रो रहा था। मैं उस शेख के करीब गया, मैंने कहा असलाम अलैक या शेख, ए बुजुर्गवार आप पर सलाम हो, ये तो बता दीजिए कि आज ये कौन सी ईद है। तो रोते हुए उस बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, इस वक्त कोई ईद नहीं है, हमारी ईदें गुजर चुकी हैं, इस वक्त कोई ईद नहीं है, और गिरिया करने लग गया। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर मुझे बता दीजिए कि ये हालात बड़े अजीब व गरीब हैं। तो शेख ने मुझे गौर से देखा और कहा तुम कहाँ से आ रहे हो। कहा कि नहीं मैं मदीने से आ रहा हूँ, मैं कूफे का नहीं हूँ, मैं इस शहर से बाहर का हूँ। जब बुजुर्ग ने महसूस किया कि मैं कोई जासूस नहीं हूं, मैं इब्न ज़ियाद का भेजा हुआ कोई बंदा नहीं हूं, बल्कि हकीकत में एक मुसाफिर हूं, तो दाढ़े मार मार के रोने लग गया और कहने लगा कि ए शख्स तुम जानते नहीं हो, दो फौजों में जंग हो गई, एक फौज ने दूसरे फौज के शिशमहा बच्चे तक को कत्ल कर दिया, उनकी खवातीन को असीर कर दिया, और मुझे खौफ है, मुझे खौफ है कि कहे उन खवातीन को कैदी बनाकर हमारे शहर में ना लाया जाए कि गजब इलाही नासिल हो जाए। कहते ए मुसाफिर ये भी सुन लो, कहते मेरे करीब आ जाओ, जानते हो हुसैन इब्ने अली इब्ने अभी तालिब को। कह रहे मन कौन, किसकी बात कर रहे हो, अली के बेटे हुसैन की बात कर रहे हो। कहते हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कहते हाँ, तो कह रहा मुझे डर है कि उसका कटा हुआ सर करे मेरे शहर में ना लाया जाए। अजी तो कुफे की ये आलम थी। और बिशर बिन हसीन कहता है अभी थोड़ा सा वक्त गुजरा था कि मैंने असीरों के काफिलों को शहर में दाखिल होते हुए देखा। खुतबे के बाद मैंने असीरों के काफिले को, मैंने देखा कि एक मजमा बीबी ने जो ज़ैनब बिनते अली थी, खुतबा बयान फरमाया। उसके बाद इस काफिले को शहर की गलियों और बाजारों में फिराया जाने लगा। मैंने पूछा इस असीरों के काफिले को कहाँ ले जाया जा रहा है। कहने लगे ये इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेके चले जाएंगे। कह रहे मैंने देखा, मैं इस काफिले के पीछे चला गया, मैंने देखा कि काफिले के आगे नौ के सिना पर सर हैं और इनके पीछे बच्चियां और बीवियां हैं। कह रहे कि जब दरवाजे इब्ने ज़ियाद के करीब पहुंचे, बहुत से लोग तमाशाबीन खड़े थे, दाएं बाएं देख रहे थे। इतने में एक उम्र रसीदा खातून आई, गौर से एक सर की तरफ यूं देखा, देखने के बाद अपने माथे पे जोर से हाथ मारा और कहा कि ये कितना कड़ियल जवान है, मुझे लगता है ये तो शबी है पैगंबर दिखता है। उसके बाद कहने लगी खुदा करे इस जवान की बात, खुदा करे इस जवान की बात जिंदा रखो। अजादारो ये अली अकबर थे, ये अली अकबर का सर था, बस मैं इशारा करता हूँ। अजादारों जानते हैं अली अकबर जब मैदान कारजार में गए हैं तो एक जुमला आया है तारीख के अंदर, अली अकबर ने दुश्मनों को इस कदर वासिले जहन्नम किया, ऐसी बहादुराना शुजाआना जंग की, ऐसी माहिराना जंग की कि कूफे के जो तमाशबीन लोग थे, जो औरतें थी, अली अकबर की जंग और कूफियों को मरते हुए देखकर रोने लग गए। रिवायत के अंदर आया है फलम यजल युकातिल हज्जा जज्जा अहलल कूफा। अली अकबर की जंग जारी थी कि अहले कूफा ने फरियाद करना शुरू कर दिया, अहले कूफा ने रोना शुरू कर दिया, यहां तक कि अली अकबर को हमने देखा कि मैदान कारजार से लौटने लगे। आप मसाइब को जानते हैं, बस शुरू में एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। अली अकबर इमाम आली मकाम के पास पहुंच कर कहने लगे तिकुल हदीद अक्लनी वल अतशु कल कतलनी। कह रहे कि अब्बा जान, जिरह की वजह से زرہ کے وزن کی وجہ سے میں بہتر طریقے سے جنگ نہیں کر پا رہا، لیکن پیاس نے بھی اب مجھے اتنا غلبہ کر دیا ہے، اگر مجھے ایک گھونٹ پانی مل جائے تو خدا کی قسم کشتوں کے پشتے لگا دو، امام عالی مقام نے انگوٹھی دے دی، پھر امام عالی مقام نے اپنی زبان مبارک دے دی، کہنے لگے ابا جان آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہے۔ واپس میدان کارزار میں لوٹے اور وہ وقت آیا کہ آواز دی، یا ابت ادرکنی، بس عزادار ہو ضعیف باپ ہیں، یہ جواب بیٹھے کہ جنازے میں پہنچے دیکھا سینے میں برچی لگی ہے، علی اکبر کے سر کو اپنے گود میں لیا، دوسرے ہاتھ سے برچی کیا کھینچی، یقیناً آسمان سے آواز آئی، حسین صبر ایوب سے آگے نکل گئے ہو، صبر ایوب تمہیں سلام کرتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارا ہم دیندار رہنا چاہتے ہیں، ہم دیندار ہیں اور دیندار رہنا چاہتے ہیں، پروردگارا ہمیں دیندار رہنے کی توفیق عنایت فرما۔